श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण श्लोक क्रमांक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महदयोनिर् अहम् बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो ये तो आप स्पष्ट समझ रहे होंगे पिछले श्लोक की व्याख्या से कि जो प्रकृति है प्रधान अर्थात उसमें उसके द्वारा हमारे शरीर दिए जाते हैं, शरीरों के अवयव दिए जाते हैं, जो शरीर को बनाने वाली वस्तुएं हैं वो प्रदान की जाती हैं और इसमें बीज रूपी जो जीव हैं वो भगवान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। तो इसे समझ, यही भगवान जब बोल रहे हैं अहम बीज प्रदा पिता, मतलब वो बीज वो जीव देने वाले भगवान हैं। ध्यान देना होगा कि जीवों की सृष्टि नहीं होती है, जीव शाश्वत हैं लेकिन उनके कर्मों के अनुसार और उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको भगवान विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थापित करवा देते हैं। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। हाँ, देख लेना चाहिए इस लाइन का, दोनों लाइनों का अर्थ देख लेना चाहिए। आदि पिता हैं अर्थात भगवान का कोई पिता नहीं है तत्व की दृष्टि से। ऐसे तो नंद महाराज और माता यशोदा उनके पिता हैं लेकिन तत्व की दृष्टि से भगवान किसी की भी द्वारा उद्भूत नहीं है, अपितु तो सब कुछ भगवान से आता है। और दूसरी बात यहां हम सीख रहे हैं कि सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संयोग है, अर्थात शरीर और जीव का संयोग है, क्षेत्र क्षेत्र के संयोग के बारे में बात हो रही है। ये मत सोच लीजिएगा कि जीव जो है वो भौतिक प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होता है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहां तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहां ब्रह्मा आसीन है पाए जाते हैं। तो इसलिए ये बात का खंडन होता है भगवद्गीता को सुन करके कि जीवन केवल हमारे पृथ्वी पे है, जीवन हर ग्रह पे है और उच्चतर जीवन भी है। जितना हमारे जैसे हमारे शरीर है उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ शरीर देवताओं के हैं, भले ही वो भौतिक ही क्यों ना हो। जीव सर्वत्र हैं, पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। देखिए यही बात प्रभुपाद जी आज समझा रहे हैं इस बात को कि तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपता सर्व योनि शुकौंतया। इसको समझा रहे हैं प्रभुपाद कि जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो मछली की हो, चाहे और इंसानों की हो, चाहे जानवर की हो, सभी का, कीड़ा हो, कुछ भी हो, सभी के जो बीज देने वाले हैं वो हैं भगवान। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। थोड़ा इन लानों को समझते हुए चलना है कि जीव पिछली प्रलय से पहले, पिछली सृष्टि से पहले जो प्रलय होती है उसमें, वो जो प्रलय होती है उसमें उनकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। तो वो भौतिक इच्छाएं उनके चित्त में रहती हैं, तो वो उस भौतिक इच्छा को लेकर के ही महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। और फिर जब दोबारा प्रलय होती है तो उनके पूर्वगत कर्मों के अनुसार, कर्मों का जो हिसाब है उसके अनुसार और उनकी पूर्वगत इच्छाओं के अनुसार उनको भगवान दोबारा प्रकृति में स्थापित करते हैं। देखिए बात बहुत सिंपल लग रही होगी, साधारण सी लग रही होगी, लेकिन देखा जाए तो ये कार्य कितना विशेष है, कितना कठिन है। अनंत जीव हैं और अनंत जीवों की अनंत प्रकार से इच्छाएं हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के कर्म हैं। इसका मैनेजमेंट कितना मुश्किल है। अगर हम ये भी समझें इस बात को कि भगवान शक्ति प्रदान करते हैं देवताओं को इस प्रकार से कार्य करने में, तो वो भी कितनी कितनी अद्भुत बात है। और भगवान की सीमित शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्षमा कीजिएगा, नहीं लगाया जा सकता इससे। लेकिन ये कार्य कितना महान है और ये एक ब्रह्मांड में नहीं हो रहा है, कितने विभिन्न ब्रह्मांड में कौन जीव क्या सेवा कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, क्या इच्छा कर रहा है, हर क्षण भगवान उसको देखते हैं और फिर अगली सृष्टि में उसको उसकी इच्छा के अनुसार और कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करते हैं। इससे एक चीज और सीखनी चाहिए कि हमारे जो शरीर प्राप्त करने का जो प्रणाली है, ये सिस्टम है, ये बाय चांस नहीं हो रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि कितना
सूक्ष्म और कितना जटिल पूरा प्रक्रिया है, जिसमें हर जीव की हर समय जो इच्छा की गई है, मृत्यु के समय जो इच्छा थी, और जो इच्छाओं का संचित कोष है उसके अनुसार शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर मिलते हैं, तो ये कतई आसान काम नहीं है और ये भगवान की ही व्यवस्था के अनुसार हो पाता है। तो फिर से इस श्लोक में हम यही देख रहे हैं कि माता जो है वो प्रकृति है प्रधान के रूप में, और भगवान उसमें जीवों को गर्भस्थ करते हैं और उसके बाद वो अपनी इच्छाओं के कारण बंधते चले जाते हैं। अब किस प्रकार से सृष्टि होने के बाद जीवों को बंधन लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे भगवान। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबदनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो इस श्लोक में और आगे आने वाले तीन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि जीव किस प्रकार भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंस जाता है और उसमें आसक्त हो जाता है। एक और बात है यहाँ पे कि निबधनंती मतलब नितराम बधनती, मतलब बहुत बढ़िया से जीव बंध जाता है तो उसको वो किस प्रकार से बंधता है हम देखते हैं। तो जो गुण हैं वो एक रस्सी की तरह हैं और जो प्रकृति से उद्भूत होते हैं या प्रकट होते हैं उनका नाम है सत्व रजस और तम, और वो जीव को बांधते हैं जो जीव अव्यय है, यानी जिसमें कोई अविनाशी जीव है उसको ये गुण बांधते हैं, और वह गुणों के द्वारा बनाए गए शरीर में बंध जाता है। और गुणों के द्वारा जीव को शरीर में बांधने का तरीका है मोहक सुख और दुख की उत्पन्न करना, मतलब सुख और दुख का प्रस्तुतिकरण करना, जाल जादू जैसे चला देना, जिससे व्यक्ति सोचता है, जी सोच रहा है सुख मिल रहा, मुझे इस व्यक्ति से सुख मिलेगा या इस गुणों के कॉम्बिनेशन से मुझे सुख मिलेगा और इस परिस्थिति से मुझे दुख मिलेगा, इस प्रकार से सुख और दुख में फंस करके जीव अपने स्वरूप को समझे बिना इस जगत में फंसा रहता है। देखिए, सुख प्राप्ति की इच्छा, भौतिक सुख प्राप्ति की इच्छा भुक्ति की इच्छा है, और भौतिक दुख से निवृत्ति की इच्छा ये मुक्ति की इच्छा है। तो भुक्ति और मुक्ति दोनों की इच्छा से जीव इस जगत में फंसा रहता है। तो मुख्य तरीका जो गुणों के द्वारा हम फंसने का तरीका है और वो है इस जगत के तथाकथित सुख और दुख। तथाकथित इसलिए क्योंकि इन सुख और दुख का आत्मा से कोई संबंध नहीं है, लेकिन सुख की लालसा की वजह से शरीर मिलेगा, और जब हम दुख की निवृत्ति करना चाहेंगे तो दुख की निवृत्ति का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं जब हम गुणों से फंसे रहते हैं। दुख की निवृत्ति का सलूशन हम ये सोचते हैं कि कैसे कुछ और एक भौतिक परिस्थिति को चेंज कर दिया जाए, इसको एडजस्ट कर लिया जाए ताकि इस दुख की निवृत्ति हो जाए, अर्थात इस जगत से निकलने का हम बारे में नहीं सोचते, बल्कि केवल उस दुख की निवृत्ति के लिए थोड़ा भौतिक एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे एक बुढ़िया थी तो वो उसके वो लकड़ी का कट्ठर लेकर चल रही थी हाथ पे, तो ऐसे एक छोटी सी कहानी है। तो भगवान आए और उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो मतलब मेरे इस लकड़ी के एक गट्ठर को हाथ से उठा के सर पे रख दीजिए। तो अर्थात थोड़ा कहीं दुख मिल रहा है तो उस दुख की निवृत्ति करके हम भौतिक परिस्थिति को थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन इस जगत से बाहर नहीं निकलना चाहते, भगवान के धाम नहीं जाना चाहते हैं। जो लोग गुणों के द्वारा प्रभावित हैं इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद का तात्पर्य, दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। बड़ी सुंदर बात है, एक महाराज जी बोल रहे थे कि हमें इस जगत की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम इस जगत के हैं ही नहीं। बहुत बार लोग करते हैं प्रश्न कि आप भक्ति करोगे तो जगत कैसे चलेगा, जगत कैसे चलेगा। वस्तुतः जगत को चलाने का ठेका हमारा है ही नहीं, वो तो भगवान लेके चल रहे हैं। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य कर रहा है। तो ये जादू इसीलिए है क्योंकि जादू के द्वारा मोहित होने के कारण हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं कि हम लोग हैं कौन, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और उसी और साथ साथ जो गुणों के द्वारा प्रस्तुत दृश्य हैं, शरीर हैं, उसके प्रति हम लोग बहुत आसक्त हैं, इसी कारण से एक के बाद एक शरीर हम धारण करने लगते हैं। क्योंकि जीवों की प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। थोड़ा समझ लेना चाहिए इस लाइन को। ये लाइन का अर्थ ये है कि हम पहले जन्मों में पहले संस्कारों के कारण कुछ इच्छाओं से ग्रसित रहते हैं, तो इस जन्म में फिर उसी इच्छा और कर्म के अनुसार फिर शरीर मिलता है। अब जब जो जिस प्रकार का शरीर मिल जाता है, फिर व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अब किसी को कुत्ते का शरीर मिला है तो फिर वो इंसान की तरह कार्य करेगा या बाघ की तरह काम करेगा। जो व्यक्ति बाघ की तरह का शरीर प्राप्त किया है जीव, वो बाघ की तरह करेगा। जो गाय बना है वो गाय की तरह करेगा, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। क्या अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है? ये विभिन्न प्रकार के शरीर। और हम लोग कभी कभी सोचते हैं इसमें हम संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन दूसरे प्रकार के शरीर में संतुष्ट हो जाएंगे। अभी ये स्त्री के शरीर में संतुष्ट नहीं हुए तो पुरुष के शरीर में संतुष्ट हो जाएंगे, या पुरुष के शरीर में संतुष्ट नहीं हुए स्त्री का शरीर मिल जाता तो अच्छा होता, या बाघ का शरीर मिल जाता, या ऐसे कार्य करते हैं जिससे इस प्रकार के शरीरों का निर्माण हो, तो फिर यही हमारे बंधन का कारण है। अब कैसे विभिन्न प्रकार के गुण हमको विभिन्न प्रकार से बांधते हैं उसको हम देखेंगे।